सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं तिहुवनशिरसे हरये भवभयगह्वादुनिगदेपणं सिद्धे जीवठान समलिनगुणचूलियं वोच्छं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देहुला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ हम छठी पुस्तक में 42 पृष्ठ पर आ गए। अब यहाँ कषाय वेदनीय यानी मोहनीय कर्म के, चारित्र मोहनीय कर्म के भेदों की हम चर्चा कर रहे हैं। चारित्र मोहनीय दो प्रकार का, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। वहाँ वेदन किसका चल रहा है, अनुभवन कषायों का या नो कषायों का, इसलिए उसको कषाय वेदनीय कहा। ये भेद है चारित्र मोहनीय कर्म के। अब यहाँ हम जो 42 पृष्ठ पर आए हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कल, ये चारों ही कषाय, चारों ही कषाय कौन से, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय है ऊपर से चौथी लाइन में। ये चारों ही कषाय सम्यक्त्व और चारित्र के विरोधक है, क्योंकि वे सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों को घातने वालों, दो घातने वाली चाहिए, दो प्रकार की शक्ति से संयुक्त होते हैं। ये तो हमने कल पढ़ा था, इस पर अभी शंका चलेगी। यह कैसे जाना जाता है, उसका समाधान गुरु के उपदेश से और युक्ति से जाना जाता है कि अनंतानुबंधी कषायों की शक्ति दो प्रकार की होती है। तो शंकाकार पूछता है कि अनंतानुबंधी कषायों की शक्ति दो प्रकार की है, इस विषय में क्या युक्ति है, यानी कौन सी युक्ति से ये जाना जाता है। तो उसका समाधान करते हैं, पूर्वोक्त शंका का उत्तर कहते हैं, सम्यक्त और चारित्र इन दोनों को घात करने वाले ये अनंतानुबंधी क्रोधादिक न तो दर्शन मोहनीय स्वरूप माने जा सकते हैं, वे दर्शन मोहनीय स्वरूप नहीं है, नहीं तो उनको दर्शन मोहनी की प्रकृति कहते हैं, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के द्वारा ही आवरण किए जाने वाले सम्यक दर्शन के आवरण करने में फल का अभाव है। यानी ये जो दर्शन मोहनी की प्रकृतियां कौन सी है जो सम्यक्त्व में बाधक ऐसी जो है, तो वो तो तीन बता रहे। सम्यक प्रकृति जो बाधक नहीं कहलाती परंतु उसके साथ साथ बनी रहती है, फिर भी वहां अस्थिरता का दोष आता है, इसलिए ये तो दर्शन संबंधी यानी सम्यक तो संबंधी ये तीन ही प्रकृतियां हैं। फिर हम पढ़ेंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी जो है, तो अनंतानुबंधी दर्शन मोहनी स्वरूप क्यों नहीं है, तो उसका उत्तर क्या दिया तीसरी लाइन में, क्योंकि सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के द्वारा ही आवरण किए जाने वाले सम्यक दर्शन के आवरण करने में फल का अभाव है, यानी उनका वैसा फल नहीं मिलता है। और दूसरी बात, और न उन्हें चारित्र मोहनीय स्वरूप भी माना जा सकता है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों के द्वारा आवरण किए गए चारित्र के आवरण करने में फल का अभाव है। इसलिए उपर्युक्त प्रकार से अनंतानुबंधी क्रोधादि कषायों का अभाव ही सिद्ध होता है, किंतु उनका अभाव है नहीं, क्योंकि सूत्र में इनका अस्तित्व पाया जाता है। सूत्र में जो अनंतानुबंधी कषाय है आदि जो कथन आया है, तो उस पर से सिद्ध है कि अनंतानुबंधी कषायों का अभाव नहीं है। क्योंकि किसी को ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि चारित्र का आवरण करने वाले तो अप्रत्याख्यान आदि है, और दर्शन मोहिनी संबंधी वो जो तीन प्रकृतियाँ हैं, तो अनंतानुबंधी कषाय हो गए ही नहीं, या वो प्रकृति होगी ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है, ये बात यहाँ बता रहे। इसलिए अनंतानुबंधी क्रोधादि कषायों के उदय से सासादन भाव की उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती। ये तो हमने कल भी चर्चा की थी। उपशम सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो जाता है और सम्यक्त्व की विराधना होती है, तो ये सम्यक्त्व का घातक सिद्ध हो जाता है। इस अन्यथा अनुपपत्ति से, यानी इसके बिना ये सासादन गुणस्थान नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी कषाय के उदय के बिना सासादन गुणस्थान नहीं हो सकता, क्योंकि चौथे में से या ऊपर के गुणस्थानों में से वो उपशम सम्यक् दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्व के काल में, ये उसमें से जो उसके अनंतानुबंधी का उदय आया है वहां से वो गिरकर दूसरे में आया। अन्यथा उपपत्ति ने नॉट अदरवाइज पॉसिबल, इसके द्वारा ये युक्ति लगाई, युक्ति के द्वारा सिद्ध किया ना, तो ये इस युक्ति से उनके दर्शन मोहनीयता, उनके यानी अनंतानुबंधी के दर्शन मोहनीयता और चारित्र मोहनीयता, मोहनीयता यानी मोहनीयपना, अनंतानुबंधी कषायों में दर्शन मोहनीयपना भी है और चारित्र मोहनीयपना भी है, वो सम्यक्त्व का भी घातक है और चारित्र का भी घातक है, ऐसा कहा ना। अर्थात सम्यक्त्व और चारित्र को घात करने की शक्ति का होना सिद्ध होता है युक्ति के द्वारा, इसका ये अर्थ होता है। और आगम के द्वारा यानी सूत्र के द्वारा तो हमने देखा, ये सूत्र में बताया है कि अनंतानुबंधी आदि कषाय होते हैं करके, तथा चारित्र में अनंतानुबंधी चतुष्का का व्यापार निष्फल भी नहीं है। तो कोई कहेंगे चारित्र मोहिनी नहीं होगा, वो तो दर्शन मोहिनी संबंधी है उसका फल, तो यहाँ कहते चारित्र मोहिनी संबंधी वो निष्फल नहीं है, बिना फल का नहीं है, क्योंकि अप्रत्याख्यानादि के अनंत उदय रूप प्रवाह के कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय के निष्फलत्व का विरोध है। अप्रत्याख्यान आदि, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन आदि, आदि में वो तीन लेना। अनंत उदय रूप प्रवाह, अनंत उदय रूप प्रवाह जैसे अनंतानुबंधी का भी वो प्रवाह रूप से वो अनंत काल तक वो चलता रहता है, वैसे ये अन्य भी तीनों चलते रहते हैं, तो ये अनंतानुबंधी के साथ जुड़े हुए होने से, जब चारों एक साथ है, किसी क्रोध का उदय है तो चारों ही क्रोध का उदय एक साथ होता है। जैसे अनंतानुबंधी का फल जो उसके संस्कार अनंत भवन तक चलते हैं, कल बात हमने पढ़ी थी, वैसे अनंतानुबंधी के प्रेजेंस में अन्य जो कषाय है वे भी अनंतानुबंधी समान उनका कार्य चलता है। मैं बहुत बार उदाहरण देती हूँ कि बहुत से बच्चे हैं और सबसे उधम करने वाला एक बच्चा होता है, तो वो साथ में हो तो अन्य भी बच्चे उतनी ही उधम करते हैं। अब उसको क्लास के बाहर निकाल दो या उसको कोई अन्य रूम में भेज दो, तो वो अपने अपने जो उनका जो दिमाग उतना थोड़ा ठंडा रहता है। वैसे अनंतानुबंधी के साथ जब इनका उदय है तो वो भी अनंतानुबंधी जैसे उनकी बिहेवियर है, इसलिए अनंतानुबंधी को चारित्र मोहनीयपना है, ये बात यहाँ सिद्ध होती है। युक्ति लगा रहे ना इसमें, हाँ न्याय, जो हमें रूल मालूम है उसी को हमको पुटअप करना है, अन्यथा अनुपपत्ति, ये उसका न्याय हुआ कि इसके बिना ये हो नहीं सकता। सिद्धांत जो हमें मालूम है उसके द्वारा ये बात हमें सिद्ध करनी है। जैसे हम गणित के कुछ फॉर्मूले सीखते हैं और बाद में वो राइडर्स डालते हैं ऐसे, तो उसमें कैसा होता है कि वो भूमिति वगैरह में हमें जो बातें मालूम है उसके ही द्वारा हम वी डिराइव एट सम कंक्लूजन, और जो कुछ प्रश्न वो पूछते हैं या कुछ है उसका उत्तर हम युक्ति से ने वो सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको युक्ति कहना।
देखिए जैसे हम कोर्ट में भी देखते हैं, इंडियन पिनल कोड जो है वो उसके बलबूते पे हम न्याय मांगते हैं, तो न्याय मांगने के लिए हमें वो कलम दिखाना पड़ता है कि ये इंस्टीट्यूशन अपना ये फला फला आईपीसी का ये कलम है और उसके अनुसार ये आदमी छूट सकता है या पकड़ा जा सकता है। तो न्याय न्याय से यानी ये सिद्धांत जो है अपने जिनेंद्र भगवान ने बताया वो हम पुटअप करें कि भाई इसी ऑन दैट पर्टिकुलर लॉ या नियम या सिद्धांत के उसके ऊपर से हम ये पर्टिकुलर बात को डिराइव होते हैं इस तरह से, उसको न्याय कहो युक्ति कहो, यानी कौन से काम के लिए कौन सा न्याय बताना है क्या कौन सा सिद्धांत बताना है ये अपने दिमाग की बात है ना।
अब अप्रत्याख्यानावरण की बात करेंगे। कल हमने अनंतानुबंधी की बात की थी, उसके संबंध में अभी हमने चर्चा भी की। अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय संबंध, ये जो कर्मों की बात चल रही है ना, प्रकृतियों की बात चल रही है, कषाय और कषाय कर्म दोनों के नाम वे ही है। तब अप्रत्याख्यान ये शब्द समझाना है तो प्रत्याख्यान का अर्थ समझाकर फिर अ लगाएंगे। तो प्रत्याख्यान संयम को कहते हैं, प्रत्याख्यान कहो या संयम कहो एक ही बात है। दूसरी भाषा में त्याग भी कहते हैं ना उसको, प्रत्याख्यान त्याग को भी कहते हैं। जो प्रत्याख्यान रूप नहीं है वह अप्रत्याख्यान है, यह किंचित प्रत्याख्यान ऐसा भी कह सकते उसको। इस प्रकार अप्रत्याख्यान यह शब्द देश संयम का वाचक है, यानी किंचित प्रत्याख्यान है। अप्रत्याख्यान कहने से असंयम नहीं समझना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो असंयमी अविरत तक तो आ गया वो। परंतु यहाँ जो बात है वो देश संयम यानी थोड़ा संयम है उसकी अपेक्षा ये बात बता रहे हैं। फिर शंका, प्रत्याख्यान का अभाव असंयम है और संयम असंयम यानी देश संयम भी है उनमें, यानी प्रत्याख्यान का अभाव ये दोनों पद्धति से होगा, यानी संयम का अभाव को भी कहेंगे अप्रत्याख्यान और थोड़े संयम को भी कहेंगे अप्रत्याख्यान, जिसको देश संयम कहते हैं। उनमें असंयम को छोड़कर अप्रत्याख्यान शब्द केवल संयमासंयम के अर्थ में ही रहता है, यह कैसे जाना जाता है? यहाँ जो बात हो रही है वो तो मात्र संयमासंयम के बारे में ही इसका अर्थ होता है, ये आपने कैसे जाना, ऐसी इसकी शंका है। अब उसका उत्तर देते हैं। आवरण शब्द के प्रयोग से जाना जाता है कि अप्रत्याख्यान शब्द केवल संयमासंयम के अर्थ में रहता है। आगे ये आवरण करने वाला यानी वो नहीं होने देता, ऐसा कर्म है ना, प्रत्याख्यान नहीं होने देता या अप्रत्याख्यान नहीं होने देता, यानी थोड़ा भी प्रत्याख्यान नहीं होने देता, ऐसा इसीलिए अप्रत्याख्यान है थोड़ा प्रत्याख्यान, और अप्रत्याख्यान को भी जो आवरण करता है वो अप्रत्याख्यान आवरण। जैसे पांचवें गुणस्थान का नाम है देश संयम, तो वहां अप्रत्याख्यान आवरण का उदय है कि नहीं है? पांचवें में किसका उदय है? प्रत्याख्यान आवरण और संज्वलन का है। प्रत्याख्यान उसका आवरण प्रत्याख्यान नहीं होने देता, परंतु चौथे वाले में अप्रत्याख्यान आवरण, अप्रत्याख्यान यानी थोड़ा संयम, थोड़ा भी संयम नहीं होने देता, यानी क्या होता है वहां असंयम होता है। अभी असंयम भी होने नहीं देता ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते आवरण शब्द के साथ, इसलिए अप्रत्याख्यान का अर्थ आगे आवरण शब्द लगाया है ना, अप्रत्याख्यान को भी जो आवरण करता है, असंयम पूरा जो असंयम है अविरति उसको आवरण करता है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है, थोड़े संयम को आवरण करता है, अणुव्रतों को, अणु मात्र है ना थोड़े, अणुव्रतों को जो आवरण करता है उसको अप्रत्याख्यान कहा। इसलिए यहां अप्रत्याख्यान शब्द से संयमासंयम समझना। और संयमासंयम को जो आवरण करता है, ये हम तो शॉर्ट में बता देते कि अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, कषाय के नाम या कर्मों के नाम इसे कहते शॉर्ट में, परंतु उसका फुल फॉर्म क्या है? अप्रत्याख्यानावरण, उसको आवरण करने वाले, अप्रत्याख्यान भी नहीं होने देते, ऐसे अप्रत्याख्यानावरण कर्म। और जो पांचवे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है, तो वो प्रत्याख्यान ने पूर्ण संयम नहीं होने देते, उसका उदय चल रहा है ना, तो उदय का कार्य क्या है? नहीं होने देना, आवरण है वहां पर। अभी हम इसको फिर पढ़ेंगे, देखो समाधान है ना नीचे वाला। आवरण शब्द के प्रयोग से जाना जाता है कि अप्रत्याख्यान शब्द केवल संयमासंयम के अर्थ में रहता है। कर्मों के द्वारा असंयम का आवरण तो किया नहीं जाता। असंयम तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, अभी नीचे जमीन पर ही खड़ा है, अभी वो कहाँ गिर के जाएगा, असंयम ही है। संयम का आवरण करने वाला हो सकता है, अभी असंयम का आवरण करने वाला कैसे होगा? इसलिए यहाँ जो अप्रत्याख्यान को आवरण करने वाला ऐसा जब कहते हैं, तो अप्रत्याख्यान का अर्थ संयमासंयम लेना, देश संयम। तो जो देश संयम को भी आवरण करता है वो अप्रत्याख्यानावरण, जो चौथे में उसका उदय है। जब हम एक का नाम लेते तो उसके आगे वाले भी उसके साथ है। जब हम कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण का उदय, तो प्रत्याख्यानावरण संज्वलन भी वहां पड़े हैं। जब हम कहते हैं अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, तो चारों का ही उदय है ऐसा समझना। उसमें से जो मुखी है उसका नाम लेंगे हम, बलवानों भी। देखो सेकंड लाइन, कर्मों के द्वारा असंयम का आवरण तो किया नहीं जाता, अन्यथा चारित्रावरण कर्म के अचारित्रावरणत्व का प्रसंग आ जाएगा। क्या कहते हैं? ये जो है वो चारित्रावरण कर्म कहलाते हैं। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन है, थोड़ा भी चारित्र, ये अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान खास, थोड़ा भी चारित्र नहीं होने देते, तो चारित्र को आवरण करने वाला। जैसे संज्वलन है, वो कौन से चारित्र को आवरण करते हैं? यथा क्या चारित्र को आवरण करते हैं। प्रत्याख्यानावरण है, वो सकल संयम को, सकल चारित्र को आवरण करते हैं। अप्रत्याख्यान है, वो देश चारित्र को आवरण करते हैं। ये तो चारित्रावरण कर्म कहलाते हैं। जैसे हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण देखी ना, यह चारित्रावरण कहते हैं इन तीनों को। तो क्या कहते हैं यहाँ कि यदि असंयम का भी आवरण हो, दो निगेटिव आ गई ना, असंयम का आवरण करने वाला कोई हो, कर्म हो, तो असंयम का उल्टा भाव प्रकट होगा, यानी क्या, चारित्र प्रकट हो जाएगा। असंयम को आवरण कर दिया तो उसको चारित्र मोहनीय कौन कहेगा, या चारित्रावरण कर्म कैसे कहेंगे हम उसको? चारित्र के अचारित्र को आवरण करता है, यानी चारित्र प्रकट हो जाता है, तो उसको हम चारित्र मोहनीय नहीं कह सकते। तो ये तो चारित्रावरण कर्म है, चारित्र को आवरण करने वाले कर्म है। अप्रत्याख्यानावरण, वर्णीय शब्द है ना उसमें, जैसे दर्शनावरण, ज्ञानावरण है, वैसे ये जो आगे वाले है अनंतानुबंधी, तो चारित्र मोहनीय का भेद है, परंतु आवरण वाले कर्म कौन से? अप्रत्याख्यानावरणीय, वर्णीय कहो या वर्ण कहो, एक ही बात है। तो अप्रत्याख्यान ने किंचित त्याग, उसको भी आवरण करने वाला, उसको भी नहीं होने देने वाला, ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण कर्म, उसका उदय चौथे में है, तो उसको किंचित भी त्याग या किंचित भी चारित्र, यानी अणुमात्र भी, यानी देश मात्र भी नहीं है। अब प्रत्याख्यानावरणीय की बात आगे आएगी, उसकी बात हम बाद में करेंगे, यहाँ तो अप्रत्याख्यानावरणीय की बात चल रही है। क्या कहते हैं? यदि उसको संयम का आवरण करने वाला मानेंगे, तो चारित्रावरण कर्म के अचारित्रावरणत्व का प्रसंग आ जाएगा। अतः पारिशेष न्याय से, पारिशेष, परिशेष, शेष यानी रिमेनिंग, पारिशेष यानी अभी, वेन वी डिराइव एट सम कंक्लूजन कि ये हो नहीं सकता, इसलिए अभी यही एक बच गया उसका सॉल्यूशन, उसका एक ही उत्तर है, तो पारिशेष न्याय से। अप्रत्याख्यान शब्द का अर्थ संयमासंयम ही है। पारिशेष यानी अन्य अर्थ हमने यहाँ खंडन किया, उसका रूल आउट किया, इसलिए अभी कौन सा अर्थ रह गया? संयमासंयम। यहाँ पर अप्रत्याख्यान शब्द के दो अर्थ बताए। एक तो प्रत्याख्यान का अभाव रूप अप्रत्याख्यान, जिसको असंयम कहेंगे, और जो देश संयम यानी देश प्रत्याख्यान, उसको भी अप्रत्याख्यान कहा। इन दो अर्थों में से पहला जो अर्थ असंयम वाला, वो हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म कहते हैं तो असंयम को आवरण करने वाला कोई कर्म नहीं है। इसलिए अप्रत्याख्यान का अर्थ प्रत्याख्यान का अभाव ऐसा नहीं हो सकता। तो दो अर्थों में से एक अर्थ रूल आउट किया हमने, निकाल दिया, उसका खंडन किया। अभी एक ही बचा, कौन सा अर्थ बचा? संयमासंयम। तो उसको आवरण करने वाला कर्म, ऐसा हम उसको कहेंगे। इसको कहते हैं पारिशेष न्याय। दो अर्थों में से एक अर्थ क्यों नहीं होता, उसकी चर्चा की। अभी क्या रह गया? संयमासंयम। एक उसको कुछ नाम दिए ना उनके ने, ये हमारी संस्कृत भाषा रोज की है ही नहीं है, इसलिए इन शब्द ऐसे अटपटे आते तो हमको ये सब लगता है ये कौन सा और बड़ा न्याय आ गया। तो इस न्याय से अप्रत्याख्यान शब्द का अर्थ संयमासंयम ही है। अथवा नत्रजन्य पद ईषत अर्थ में वर्तमान है। जब अ शब्द आता है तो उसका अर्थ ईषत यानी अल्प ऐसा भी होता है। प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान यानी थोड़ा प्रत्याख्यान, व्रत यानी सकल व्रत, और अणुव्रत यानी थोड़े व्रत है, ईषत कहते हैं। ऐसे ही ईषत अर्थ में कषाय और नो कषाय भी हमें मालूम है ना, नो जो शब्द है वहां वो ईषत अर्थ में आता है। इसलिए जो प्रत्याख्यान नहीं वह अप्रत्याख्यान अर्थात संयमासंयम है, यह बात सिद्ध हुई है। यानी यहाँ जो ये जो अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म की हम चर्चा कर रहे हैं, वो ईषत प्रत्याख्यान जो है देश चारित्र या संयमासंयम, उसको आवरण करने वाला कर्म है। इन कर्मों को चारित्रावरण कर्म कहते हैं। और जब ये चारित्र की बात आती है तो चारित्रावरण कर्म के एक शोभशम से ऐसा कहेंगे आगे, ये चारित्रावरण कर्म है। नत्र पद की ईषत अर्थ में वृत्ति असिद्ध भी नहीं है। ये जो न शब्द आया यहाँ यानी अ के अर्थ में, तो उसका अर्थ पद यानी उसका वर्ण, ये शब्द ईषत अर्थ में वृत्ति असिद्ध नहीं है, यानी वो ईषत अर्थ में वो वापरते हैं वो शब्द, ये प्रसिद्ध है, असिद्ध नहीं यानी प्रसिद्ध है। क्योंकि इस युवती के नख न लाल है और न सफेद है, किंतु ताम्र वर्ण वाले कुरवक के समान है। इस प्रयोग में अन्यथा स्ववचन विरोध का प्रसंग प्राप्त होगा। क्या कहते हैं जब ऐसे कोई स्टेटमेंट करते हैं कि किसी लड़की के नख न तो लाल है और न सफेद है किंतु ताम्रवर्ण है, वो किंचित है, न लाल है ने किंचित लाल है, ये न लाल लिखा है ना वहाँ, तो किंचित अर्थ में भी वो प्रयुक्त तो होता है। इस प्रयोग में अन्यथा स्ववचन विरोध का प्रसंग प्राप्त होता, तथा अनुदरी कुमारी, यहाँ पर ये अनुदरी कुमारी किसको कहते मालूम है आपको? कोई स्लिम लड़की हो, हाँ मेडन के अर्थ में नहीं है, बहुत पतली ऐसी, वेल मेंटेन कहो आपकी भाषा में, हाँ तो पतली कमर वाली नहीं, जिसके पेट ऐसा आगे नहीं दिख रहा है, तो उसको बिना पेट वाली ऐसे अनुदरी। तो क्या उसके उदर नहीं है? तो बिल्कुल स्लिम है कहने के लिए। देखो क्या कहा, अनुदरी कुमारी, यहाँ पर उदर के अभाव से कुमारी के मरण का प्रसंग प्राप्त होगा। यदि उसको उदर ही नहीं कहेंगे वो तो मरण हो जाए, ये मर गए ऐसा कहेंगे हम उसको, मरण का प्रसंग प्राप्त होगा। इस विषय में यह उपयोगी श्लोक है। अभी कोई उपयोगी श्लोक बता रहे हैं, देखेंगे क्या कहते हैं। उपमा नहीं है, देखो यहाँ अ शब्द का अर्थ बता रहे हैं, अ या अन शब्द बिना उदर वाली, तो बिना उदर वाली कोई होगी क्या? परंतु वो तो बड़ा नहीं है पेट, इसलिए बिना उदर वाली कहें। है तो पेट, जैसे उसकी बात छोड़ो, हमने आपको पूछा अश्विन भाई अभी कैसी तबीयत है, ब्लड प्रेशर? अभी कुछ ब्लड प्रेशर नहीं है, तो क्या आपके बिना ब्लड प्रेशर के हो जाए? तो बिना ब्लड प्रेशर होता है वो तो डेड बॉडी है, उसको कोई, हाँ तो नॉर्मल है, हाई नहीं है, क्या है ना, हाइपर टेंशन नहीं है, नहीं तो वो लो भी ब्लड प्रेशर हो जाता है, वैसी बात नहीं है। हम जब कहते हैं बुखार नहीं है, या टेम्परेचर कैसे, अभी आपको बहुत टेम्परेचर था ना कल, 104 डिग्री था, अभी टेम्परेचर नहीं है, बुखार के अर्थ में ही टेम्परेचर यूज करते, तो क्या बॉडी टेम्परेचर से शून्य हो गई क्या, बिना टेम्परेचर की हो गई? तो हो ही नहीं सकता। ऐसे यहाँ ये बिना या अ अर्थ जो है वो थोड़े अर्थ में भी प्रयुक्त तो होता है, इतना ही उनको कहना है, ये व्याकरण का नियम बता रहे हैं, भाषा का। प्रतिषेधयति समस्तम् प्रसक्तमर्थम् तु जगति नो शब्दः स पुनः तदवयवैवा तस्माद् अर्थान्तरे वा स्यात्। ये जो नो शब्द है ना, वो उसके संबंध में ये संस्कृत श्लोक बताया उन्होंने। देखा जगत में न यह शब्द प्रसक्त समस्त अर्थ का तो प्रतिषेध करता है, यानी नो जो शब्द आता है तो संपूर्ण का प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, किंतु वह प्रसक्त अर्थ के अवयव, प्रसक्त यानी जिस संबंधी ये बात चल रही है उसका जो अवयव यानी अंश, अर्थात एक देश में अथवा उसके भिन्न अर्थ में रहता है, अर्थात उसका बोध कराता है। क्या कहना चाहते हैं, न कहो या नो कहो या अन, जो कोई नकार अर्थ में जो शब्द आया है वो जो जो बात हम बता रहे हैं उसके संपूर्णपणे का तो निषेध करते हैं। जैसे यहाँ अप्रत्याख्यान शब्द आया तो संपूर्ण प्रत्याख्यान का निषेध हो गया, सब पूरे प्रत्याख्यान की बात यहाँ नहीं है, परंतु अ शब्द से उसका एक देश सूचित हो सकता है, उसका निषेध नहीं करता। ये रूल है भाषा का, यहाँ एक नियम बता दिया उन्होंने।
सिर्फ अप्रत्याख्यान में एक देश का निषेध है, बाकी में हमेशा
एक देश का निषेध नहीं है। अप्रत्याख्यान का ही अर्थ होता है एक देश संयम, और उसका आवरण करने वाला यानी एक देश संयम भी जो नहीं होने देता, जो देश चारित्र भी नहीं होने देता, उसको हम अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म कहेंगे। एक देश संयम, अप्रत्याख्यान का अर्थ होता है एक देश संयम कहो या देश संयम कहो या देश चारित्र कहो या संयमा संयम कहो या अनुव्रत कहो, एक ही बात है। उसको भी जो देता नहीं है, होने देता नहीं है, उसका आवरण करता है, उसको कहते हैं अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म। कौन से गुणस्थान की बात है ये? चौथे। पांचवे में तो अप्रत्याख्यान होता है परंतु प्रत्याख्यान नहीं होता, तो पांचवे के लिए कौन से कर्म का उदय है? प्रत्याख्यानावरणीय, आगे वाला नहीं होने देता, उसका तो देश चारित्र तो अभी है वहां, इसीलिए तो हमने वहां पांचवा गुणस्थान कहा। ये आवरणीय शब्द जोड़ने से उसका पूरा, हम शॉर्ट में हमेशा ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ऐसे कहते हैं, वो प्रत्याख्यान नाम का कोई कर्म ही नहीं है और कोई कषाय भी नहीं है, उसका आवरण करने वाला ऐसा लेना। देखो अप्रत्याख्यान संयमा संयम का नाम है, यानी अप्रत्याख्यान का अर्थ संयमा संयम, कोई असंयम नहीं समझ ले इसलिए इतनी चर्चा की। उस अप्रत्याख्यान को जो आवरण करता है, आवरण करता है नहीं होने देता, उसे अप्रत्याख्यानावरणीय कहते हैं। जैसे ज्ञान के लिए ज्ञानावरणीय शब्द आया था, यह अप्रत्याख्यान यानी संयमा संयम उसको आवरण करने वाला वो अप्रत्याख्यानावरणीय। वह क्रोध मान माया और लोभ के भेद से चार प्रकार का है, जैसे अनंतानुबंधी चार प्रकार का देखा था वैसे ये भी चार प्रकार का है। संयमा संयम है, हाँ हाँ,
तो उसके बदले ऐसे बोलते हैं उसको अप्रत्याख्यान,
हाँ, उसको अप्रत्याख्यान कह सकते हैं, परंतु अप्रत्याख्यान उसका अर्थ हमें बराबर ख्याल में आना चाहिए। वहाँ देश चारित्र है, क्योंकि हम चारित्र की गुण की बात कर रहे हैं, चारित्र की अपेक्षा बताते हैं, तो देश संयम है क्या नहीं है या क्या है ऐसा ही वहाँ बताना है। तो अप्रत्याख्यान के दो अर्थ होते हैं, संयमासंयम और असंयम। तो फिर आपको और एक वाक्य बताना पड़ेगा, यहाँ अप्रत्याख्यान का अर्थ देश चारित्र है, इसलिए हमने जो अभी हम चारित्र के जो चार भेद करते हैं सम्यक चारित्र के, तो पहले स्वरूपाचरण चारित्र, फिर देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ऐसे है ना। अभी उसके उसके आवरण करने वाले, उसके उसके जो बाधक कर्म है उसके हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, प्रत्याख्यान, संयम और महाव्रत, ये दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन चल रही है। ये तीनों एक अर्थ वाले नाम हैं। मिला क्या नहीं मिला? देखो, प्रत्याख्यान कहो, संयम कहो या महाव्रत कहो, यानी जब आप प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं तो प्रत्याख्यान वर्णीय कहना चाहिए, क्या ले? ये तीनों एक अर्थ वाले नाम है। प्रत्याख्यान को जो आवरण करते हैं वे प्रत्याख्यान वर्णीय क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय कह लेते हैं, यानी जो संयम नहीं होने देते। ये पांचवें गुणस्थान की बात है ना, तीसरी जो कषाय चोकड़ी है उसका उदय वर्तता है वहां। पांचवें गुणस्थान वाले को प्रत्याख्यान वर्णीय और संज्वलन तो है ही उसके साथ, तो उसका उदय है। तो प्रत्याख्यान ने संयम कहो या महाव्रत महा नहीं होने देते। प्रत्याख्यान को जो आवरण करते हैं वे प्रत्याख्यान वर्णीय क्रोधमान मायालोक कहलाते हैं। अभी संज्वलन की बात करेंगे, जो सम्यक प्रकार जलता है उसे संज्वलन कषाय कहते हैं, यानी वो कषाय भी होते रहे और यहाँ संयम भी चलता रहे। तो शंकाकार पूछने वाले भी, इस संज्वलन कषाय में सम्यकपना क्या है? सम्यकपने जलता है लिखा है ना, तो उसका समाधान, चारित्र के साथ जलना ही इसका सम्यकपना है, उसका सहचर है, वो चारित्र का सहचर है, चारित्र को बाधा नहीं पहुंचाता। जैसे अप्रत्याख्यानावरणीय कहो या प्रत्याख्यानावरणीय कहे थे, वो तो चारित्र होने ही नहीं देते थे। उसका उदय हो तो वहाँ चारित्र का अभाव है, परंतु यहाँ संज्वलन भी होता रहे, जलते रहे और वहाँ चारित्र भी चलता रहे, ऐसा हो सकता है। जैसे हमने सम्यक प्रकृति में देखा था ना, सम्यक प्रकृति के कारण वहाँ सम्यक तो नहीं है, परंतु सम्यक प्रकृति का उदय होता रहे और सम्यक तो भी बना रहे, ऐसा हो सकता है। तो सम्यक प्रकृति से क्या होता है? अरे उसमें अस्थिरता रहती है। वैसे यह संज्वलन भी चलता रहे और साथ साथ चारित्र भी चलता रहे, तो उसका क्या कार्य है? चारित्र उसका कार्य है क्यों अश्विन भाई? ये जो संज्वलन कषाय का उदय भी चलता रहे और यहाँ संयम भी है मुनिराज को, तो जो संयम है क्या वो संज्वलन का कार्य है? तो संज्वलन का कार्य क्या है? हाँ, यथाख्यात चारित्र नहीं होने देते, वो कषाय है ना। हाँ, देख, शंकाकार ने क्या पूछा था अभी, ये संज्वलन कषाय में सम्यकपना क्या है? तो उसका उत्तर दिया, चारित्र के साथ जलना ही इसका सम्यकपना है, अर्थात चारित्र को नहीं विनाश करते हुए ये कषाय उदय को प्राप्त होते हैं, यह इसका अर्थ है। यानी हम देखते हैं ना, मुनिराज को तीत कषाय चोकड़ी का तो अभाव है, अभाव इन्हें अनुदय है, उदय नहीं है, और संज्वलन का उदय है। फिर भी संज्वलन का उदय हो तो भी उनका जो संयम कहो या चारित्र कहो, महाव्रत कहो, ये तो बना है। हाँ, जल रहे, कषाय का कार्य ही जलना है, हम भी अपने कषायों में जल रहे हैं। मंद मंद जलता है, इसका कहते हैं संज्वलन। उसका ऐसा भी करते हैं, यहाँ सम्यकपना अर्थ किया है, कहीं कहीं मंद मंद जलना ऐसा भी अर्थ किया उसका।
जलना यानी राग आग दहे सदा कहा ना, तो तो क्या क्या जलाती है? जीव को ही जलाती, जलाती यानी दुखी करती है। तो यहाँ भी संज्वलन कषाय को ही मंद रूप से जल,
होने नहीं,
होने नहीं देता। घात
जैसे सम्यक प्रकृति के उदय में जीव श्रेणी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? दर्शन मुनि की जो सम्यक प्रकृति है, सम्यक तो बना रहता है, उसके साथ साथ सम्यक तो भी चलता रहे, परंतु उसके कारण कुछ ना कुछ वहां मलिनता कहो या दोष या अस्थिरता जो है, ऐसी अस्थिरता नहीं कि सम्यक का घात करे, फिर भी वो तो सम्यक तो होने नहीं देता, ऐसा कहाँ का? हाँ, नहीं होने देता है ना, क्या करता है? तो उसमें जो कुछ यथा, उसमें जो दोष बनता है कि जिसके कारण वो यथा क्या चरित्र नहीं है, हाँ वैसा दोष की जो यथा क्या पूर्ण चरित्र की प्राप्ति नहीं होती। आप कहते हैं जीव को दुख होता है और नाम इसको दिया, उसमें वैसी शक्ति पाई जाती है कर्म में वैसी। अभी क्रोध कर्म जो है, अभी संज्वलन की बात भूल जाओ, सामान्य बात करेंगे हम, क्रोध नाम का कर्म है। तो पुद्गल परमाणु में ऐसी शक्ति है, क्रोध वाली शक्ति पुद्गल परमाणु में है कि जिसके उदय में यहाँ जीव में भी क्रोध परिणाम होते, इसीलिए क्रोध निश्चय से जीव पुद्गल का, ऐसा कहते समयसार में क्यों कहे ऐसा, निश्चय से पुद्गल का है, पुद्गल में वैसी शक्ति पड़ी है और उसके लक्ष्य से यहाँ जीव भी करता है। लक्ष्य से यानी देख देख के करता है, ऐसी बात नहीं, वो सहज वैसा हो जाता है, उसको कहते उसके लक्ष्य से उसमें जुड़ना को। हम कहते हमको तो कर्म है ये भी पता नहीं, हम कहाँ जुड़ेंगे, वैसे उसको जुड़ना नहीं, देख देख कर होता है, उसको जुड़ना नहीं कहते। जहाँ क्रोध हो रहा है वहाँ सामने, वहाँ क्रोध कषाय नाम के जो कर्म है, क्रोध कर्म, उनका भी उदय चलता रहता है। इंदुबेन आप पूछ रहे, पुद्गल एक दूसरे से क्रोध भी नहीं करता है? नहीं तो जीव शांति से बैठेगा और पुद्गल की लड़ाई देखते रहेगा। पुद्गल में क्रोध उत्पन्न करना के जो कुछ निमित्त पाने से शक्ति है, तो उसको दुख होता होगा कि नहीं? क्योंकि जीव में भी क्रोध होता है तो जीव दुखी होता है, तो पुद्गल में जो क्रोध होता है नहीं, ऐसा नहीं होता जैसे जीव कर रहा है, तो उसमें जो शक्ति है उसके कारण उसको दुख होगा कि नहीं होगा? मिर्ची में वो तीखापन का गुण है तो उसके कारण ये हम यहाँ हमारी जलन होती है, तो उसमें कितनी होती होगी? उसमें कुछ नहीं होती। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अभी शंकाकार फिर पूछ रहे हैं, चारित्र का चारित्र को नहीं विनाश करने वाले संज्वलन कषायों के चारित्रावरणता कैसे बन सकती है? फिर उसको आप चारित्रावरण क्यों कहते हैं? क्योंकि चारित्र का तो घात करता नहीं है, सकल चारित्र तो होने देता है, उसके साथ साथ इसका जलन चलता है, तो आप उसको चारित्र का आवरण करने वाला ऐसा क्यों कहते हैं? प्रश्न ख्याल में है ना? उसका समाधान नहीं, क्योंकि ये संज्वलन कषाय संयम में मल को उत्पन्न करके यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति के प्रतिबंधक होते हैं। संयम में मल उत्पन्न होता है, जैसे हमने देखा था वहां सम्यक्त्व में मल उत्पन्न होता है, सम्यक प्रकृति के उदय में देखा था चल मल अगाड़ आदि दोष होते, वैसे यहाँ संज्वलन के कारण संयम में मल उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि संयम का घात हो, परंतु ऐसा दोष है कि जो पूर्ण यथाख्यात संयम नहीं होने देता, इसलिए इनके चारित्रावरणता मानने में कोई विरोध नहीं है। ये संज्वलन कषाय भी क्रोध मान माया और लोभ के भेद से चार प्रकार के हैं। फिर शंका, क्रोधादिकों में प्रत्येक पद के साथ संज्वलन शब्द का उच्चारण किस लिए किया गया है, आपका किसी का प्रश्न था ना, आप अरविंद भाई ने पूछा था, यानी क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन, लोभ संज्वलन, ऐसा क्यों कहा, हर एक के साथ क्यों लिखा, उसका समाधान। प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायों के समान संज्वलन कषायों के बंध और उदय के अभाव के प्रति प्रत्यासक्ति नहीं है, प्रत्यासत्य नजदीकता, एक ही काल में होते ना, प्रत्यासत्य ने नजदीकता, बंध और उदय के अभाव। इस बात के बतलाने के लिए कल हमने भी देखा था ना कि संज्वलन का उदय भी ऊपर के गुणस्थानों में वो क्रम से मिटता चला जाता है, क्रोधादि पद के प्रत्येक पद के साथ संज्वलन शब्द का उच्चारण किया गया है। अभी इसी का विशेषार्थ दोबारा फिर समझा रहे हैं। सूत्र में क्रोधादि प्रत्येक पद के साथ संज्वलन शब्द के उच्चारण का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चतुर्थ गुण स्थान में अप्रत्या करना प्रत्यय हुआ है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया और लोभ इन चारों कषायों की एक साथ ही बंध विच्छित्ति और एक साथ ही उदय विच्छित्ति होती है। देखो विच्छित्ति किसे कहना है पहले हम समझ लेते हैं। विच्छित्ति यानी बंद हो जाना, रुकना। तो जिन प्रकृतियों का बंध, अभी हम पहले गुणस्थान की बात करेंगे, पहले गुणस्थानों में तो बनती है, जैसे मिथ्यात्व तो प्रकृति पहले गुणस्थान में तो बनती है, परंतु पहले के ऊपर दूसरे तीसरे आदि किसी भी गुणस्थान में नहीं बनती है तो हम कहेंगे कि वो उसकी विच्छित्ति पहले गुणस्थान में हो गई। पहले गुणस्थान में हो गई का अर्थ पहले गुणस्थान में तो है, बाद में रुक गए। तो मिथ्यात्व का बंध भी पहले गुणस्थान में ही है और उदय भी पहले में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता, तो हम कहते हैं उसके उदय की और बंध की विच्छित्ति पहले में हो गई। तो यहाँ बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति में समानता है। कोई ऐसी प्रकृतियां होती है, बंध तो होता है उदय नहीं होता उन गुणस्थानों में, आपको मालूम है कोई? तीर्थंकर प्रकृति, बंध तो चौथे से आठवें तक होता है और उदय तो होता है तेरहवें चौदहवें में है ना उसका उदय। आप कौन से कहते हैं? कोई ऐसी है कि उदय होते नीचे के गुणस्थानों में और बंध होता है ऊपर के गुणस्थानों में, आहारक प्रकृति, बंध तो होता है सातवें आठवें में और उदय तो होता है छठे में। अभी यहाँ बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति की प्रत्यासक्ति यहाँ बता रहे हैं किसमें, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, जिस प्रकार चतुर्थ गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग इन चारों कषायों की एक साथ ही बंध विच्छित्ति और एक साथ ही उदय विच्छित्ति होती है, तथा जिस प्रकार पांचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान और माया और लोभ इन चारों कषायों की एक साथ ही बंध विच्छित्ति और एक साथ ही उदय विच्छित्ति होती है, उस प्रकार से, कल मैंने भी अंदाजन कारण यही बताया था क्योंकि मैंने आगे नहीं पढ़ा था कि आजकल में तो आगे पढ़ के रखने को टाइम ही नहीं मिल रहा। उस प्रकार से नौवें गुणस्थान में क्रोधादि चारों संज्वलन कषायों की एक साथ न तो बंध विच्छित्ति ही होती है, क्योंकि बंध विच्छित्ति भी वो क्रम क्रम से होती रहती है, और न उदय विच्छित्ति होती है, यानी वो क्रम से होती रहती है, किंतु पहले वहां पर क्रोध संज्वलन की बंध से विच्छित्ति होती है, पुनः मान संज्वलन की, पुनः माया संज्वलन की, और सबसे अंत में लोभ संज्वलन न रह गया, लोभ संज्वलन की बंध विच्छित्ति होती है। यही क्रम इनकी उदय विच्छित्ति का भी है, उदय की विच्छित्ति का भी यही उनका क्रम है। विशेषता केवल यह है कि सूक्ष्म लोभ संज्वलन कषाय की, अभी लोभ के बारे में वो भी बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति अलग अलग है। देखो क्रोध संज्वलन के बारे में जहां तक क्रोध का उदय है वहां तक ही उसका बंध भी है, परंतु लोभ के बारे में, लोभ का बंध तो नौवे के अंत तक है और सूक्ष्म लोभ का उदय दसवें में है, दसवें में उसका बंध नहीं है। तो बंध की विच्छित्ति हम कहेंगे नौवे में हुई और उदय की विच्छित्ति दसवें में हुई, यहाँ डिफरेंस है उसमें। लोभ कषाय के बारे में, संज्वलन लोभ के बारे में विशेषता यह है कि सूक्ष्म लोभ संज्वलन कषाय की उदय विच्छित्ति दसवें गुणस्थान के अंत में होती है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायों के समान संज्वलन क्रोध मान और माया और लोभ कषाय की बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति की अपेक्षा प्रत्यासक्ति या समानता नहीं है। प्रत्यासक्ति कहो या समानता कहो, यहाँ एक ही बात है, यानी एक ही बार या एक ही समय में, एक ही काल में दोनों होती है, वैसे संज्वलन के बारे में नहीं है, उसको कहते हैं प्रत्यासक्ति नहीं है। यानी हर एक का अपना अपना अलग अलग, क्रोध मान माया लोभ का अपना अपना जो बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति का काल अलग अलग है। इसी विभिन्नता के स्पष्टीकरण के लिए सूत्रकार ने सूत्र में क्रोधादि प्रत्येक पद के साथ संज्वलन शब्द का प्रयोग किया है। अब हम 24 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। अन्य जो तीन प्रकार के हैं ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण जो कषाय है, उनका बंध और उदय। उदय तो होगा, मान लेते किसी को माया का उदय चल रहा है, फिर भी बंध चारों का होता है, क्रोध मान माया लोभ सबका होता है। तो विशिष्ट गुणस्थान के अंत में भी चौथे के अंत तक अप्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, चौथे की बात चल रही। तीन कषाय विद्यमान है ना, तो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन के चार चार चार, बारह का बंध चौथे के अंत में अंत तक हो रहा है और बाकी नौ कषाय भी बंध रहे। यहाँ मुख्य कषाय कर्म की बात चल रही है। अनंतानुबंधी का उदय नहीं है चौथे में, तो अनंतानुबंधी का बंध भी नहीं है वहाँ। अब ये जीव पांचवे में आया है, तो कोई पांचवे गुणस्थान वर्ती जीव, उसको बंध किस किस का है? अप्रत्याख्यानावरण का उदय भी नहीं है तो बंध भी नहीं है, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का उदय भी है और बंध भी है। तो उदय एट ए टाइम या क्रोध या मान या माया या लोभ का होता है, दोनों का, दोनों प्रकार के क्रोध, दो चौकड़ी है ना, तो दोनों क्रोध का उदय होगा या दोनों मान का या दोनों माया का या दोनों लोभ का, परंतु बंध तो सबका होगा, क्रोध मान माया लोभ। तो कौन सा कषाय अच्छा है बोलो? हम कहते हैं अरे वो बहुत बुरा है, बहुत क्रोध करता है। अरे क्रोध करो या मान माया लोभ करो, बंध तो सबका हो रहा है और इनका काल भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त है, वो तो भले बाहर प्रकट रूप से दिखे नहीं, उसके हुए परिणाम रूप से तो चलते ही रहते। हम तो बाह्य क्रिया की तरफ देखते ये ज्यादा क्रोधी, ऐसा कहते ना, किसी के बहुत क्रोध आया और बाहर वो एकदम शांत है, बहुत अच्छा एक्टर है, तो बाहर नहीं दिखाएगा, उसके शरीर के चिन्हों पर से हमें पता नहीं चलेगा, तो क्या उसको क्रोध कषाय नहीं हुई है ना वहाँ?
ये देखिए, हम लौकिक व्यवहार में रोज रोज के दिन में कोई स्वाध्याय करने वाला जीव होगा और कभी किसी छोटी मोटी बातों पे गुस्सा करेगा, तो उसको कहते हैं आटलू बधु वाँचे छे, ने क्रोधी छे, शू फायदो, अने तमे शू करो छो, अमे तो शू सवारथी लईने सांजे दुकान पे बेसीए छे, केम त्यां लोभ नथी देखातो? लोभ भी तो एक कषाय है, पछी अमे आटला बधा पैसा कमाया, तू शू कमाव्यो? तो ये मान कषाय जो है उसको कषाय नहीं मानते, खाली क्रोध करने वाला कषाय है और वो बहुत साव है, ऐसा मानते। और ये कोई भी होवे, जब तक सम्यक तो नहीं होता है, चारों में से कोई भी कषाय है वो तो अनंतानुबंधी वाला ही है, और उसी से 16 प्रकार के बंध होने वाले हैं चारित्रमोनी के।
देखो अभी हम 24 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे नौ कषाय के संबंध में। ये हमेशा नो कर्म और नो कषाय में गफलत करते हैं। कल शाम को भी चल रहा था ना, कल परसों नहीं हो जाता है कभी कभी, नो कषाय यानी वो हास्य रति अरति वगैरह, और नो कर्म यानी शरीर मन वाणी, मुख्य रूप से तो तीनों को लिया है, बाकी अन्य वो उसके बहुत अर्थ होते हैं। सूत्र पढ़ेंगे, जम तम नो कषाय वेदनीयम कम्मम तम नव विहम, नौ प्रकार के। अभी इसी यहाँ तो एक ही सूत्र में दोनों द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक बता दी, इथि वेदम पुरुष वेदम नवसे वेदम हस्स रदि अरदि सोग भय दुगंछा चेदी। जो नौ कषाय वेदनीय कर्म है, ऐसा आखिर में वेदनीय शब्द आया तो ये कोई वेदनीय का वेद नहीं समझना, कषाय वेदनीय की बात चल रही ना। जो नौ कषाय वेदनीय कर्म है वह नौ प्रकार का है, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा। यहाँ पर अर्थात नो कषाय शब्द में प्रयुक्त, नो शब्द प्रयुक्त यानी जो यूटिलाइज्ड है यहाँ, जो वापरा है यहाँ शब्द, ये युक्त किया है जोड़ा है, तो ये जो नो शब्द है एक देश का प्रतिषेध करने वाला ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा इन स्त्री वेदादि नवो कषायों के अकषायता का प्रसंग प्राप्त होगा। नो कषाय है ना, तो किंचित कषाय ऐसा समझना, कषाय के अभाव रूप नो शब्द नहीं है। उसमें क्या ऐसा ही लिखा है, परिसेहवो प्रतिषेधक, एक देश का प्रतिषेध करने वाला। अच्छा एक देश का निषेध, नो कषाय शब्द में नो शब्द एक देश का प्रतिषेध करने वाला ग्रहण करें। अभी आगे क्या लिखते देखते हैं, होने दो क्या हानि है यदि उसको अकषाय मानेंगे, नो कषाय से कषाय रहित मानेंगे तो क्या हानि होगी, नहीं क्योंकि अकषायों के चारित्र को आवरण करने का विरोध है। यदि हम इनको अकषाय नाम के कर्म मानेंगे तो वो चारित्र को आवरण नहीं कर सकते हैं, ऐसा विरोध आ जाएगा। इस प्रकार ईषत कषाय को नो कषाय कहते यह सिद्ध हुआ, यानी नो शब्द ईषत के अर्थ में प्रयुक्त है किंचित, इस विषय में यह उपयोगी श्लोक है। यानी वहां एक देश कषाय नहीं किंचित कषाय ऐसा अर्थ लेना, ये वहां प्रतिषेध का अर्थ हुआ। अभी ऊपर जो श्लोक है उपयोगी श्लोक कहते हैं, भावस्तत्परिणामो द्विप्रतिषेधस्तदैक्यगमनार्थ नो तद्देश विशेष प्रतिषेधोऽन्यः स्वप्रयोगात्। उसका अर्थ नीचे लिखा है, भाव वस्तु के परिणाम को कहते हैं, भाव तत्परिणामो, तद यानी उसके परिणाम को भाव कहते हैं। दो बार प्रतिषेध उसी वस्तु की एकता का ज्ञान कराता है। हम देखिए ना, दो बार निगेटिव शब्द आया तो उसका अस्थि के अर्थ में अर्थ होता है। अभी हमने अभी पढ़ा ना, यह बात असिद्ध भी नहीं है यानी प्रसिद्ध है। दो निगेटिव आते हैं तब एक पॉजिटिव होगा उसका, वैसे यहाँ कहते हैं दो बार प्रतिषेध उसी वस्तु की एकता का ज्ञान कराता है। नो यह शब्द स्व और पर के योग से विवक्षित वस्तु के एक देश का प्रतिषेधक और विधायक होता है। विधि और प्रतिषेध, विधि यानी उसकी अस्थि बताना, और प्रतिषेध है ने उसका नास्ती करना उसको, यानी वस्तु के एक देश का प्रतिषेधक और एक देश का विधेयक। नहीं समझे? आधा ग्लास पानी लाया तो आधा भरे लाया, आधा खाली है, एक देश का विधेयक हुआ, एक देश का प्रतिषेधक हुआ। वैसे यहाँ पर कहते हैं हाँ विधायक, हम कहेंगे आधा भरा है तो विधायक हुआ भरने की अपेक्षा, और वही कथन आधा खाली है बताता है, ये उसका निषेध किया उसने। यही बात यहाँ आप बात आई थी ना, प्रतिषेध करने वाला है, एक देश का प्रतिषेध होता है ना, रिमेनिंग एक देश का विधायक होता है, ऐसा है। उसमें से एक देश का प्रतिषेध किया, पार्ट नहीं है बताया, तो पार्ट है सिद्ध हुआ ना, उसी में से एक ही शब्द में दोनों ही अर्थ हो गए। यहाँ देखो क्या लिखा, नो यह शब्द स्व और पर के योग से विवक्षित वस्तु के, यानी पर्टिकुलर वस्तु के, एक देश का प्रतिषेधक और विधायक होता है, यानी एक देश का प्रतिषेधक और एक देश का विधायक होता है, यानी थोड़ा है पूर्ण नहीं है, दोनों तरफ से बताया ना उसमें, या थोड़ा है और थोड़ा नहीं है, ऐसा भी। शंका, कषायों से नो कषायों के अल्पपना कैसे है? ये जो नो कषायों को ईषत कषाय या अल्प कषाय कहा, तो कषायों को तो कषाय कहा, और हास्यरत आदि इन कषायों को नो कषाय कहा या ईषत कहा या अल्प कषाय कहा, ऐसे क्यों? समाधान, स्थितियों की, बहुत अच्छा उत्तर है, अनुभाग की और उदय की अपेक्षा, क्या कहते हैं, इनकी स्थिति, इनके अनुभाग और इनके उदय की अपेक्षा कषायों से नो कषायों के अल्पता पाई जाती है। फिर उसका शंका, उसकी नो कषायों का उदय काल कषायों की अपेक्षा बहुत पाया जाता है, इसलिए नो कषायों की अपेक्षा कषायों के अल्पपना क्यों नहीं मान लेते हैं? नो कषाय ज्यादा टाइम तक चलते हैं, रोना धोना ऐसा कहते हैं, तो कहते नहीं, क्योंकि उदय काल की अधिकता होने से चारित्र विनाशक कषायों की अपेक्षा चारित्र में मल को उत्पन्न करने रूप फल वाले कर्मों के महत्ता नहीं बन सकती। क्या कहते हैं, ये जो कषाय कहा जिसको, क्रोध मान माया लोभ, ये तो चारित्र के विनाशक कहा उनको, और नो कषायों को चारित्र में मल उत्पन्न करने वाले का, इस अपेक्षा से उनमें महत्ता नहीं बन सकते, नहीं ये उससे ज्यादा नहीं हो सकते, महान यानी बड़े नहीं हो सकते, इनको अल्प कहा कषायों के सामने, नो कषायों को अल्प कहा, क्योंकि जैसे कषाय जो है वो चारित्र में तो उसका विनाश ही करते हैं, परंतु ये जो नो कषाय है वो मल उत्पन्न करते हैं, दोष उत्पन्न करते हैं, जो दोषों के द्वारा अपने आप को और पर को आच्छादित करती है उसे स्त्री कहते हैं। स्त्री शब्द का यह अर्थ बताया, व्युत्पत्ति अर्थ जिसको कहते हैं, दोषों के द्वारा अपने आप को और पर को आच्छादित करती है, हमें मालूम है बच्चा कुछ भी गलत काम करे तो पिताजी गुस्सा करते हैं, तो माँ क्या कहती है, कुछ ना कुछ उस पर आवरण डालती है, दोषों पर, हाँ जो कुछ करती है, और उसके कुछ दूसरे ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं, तो पिताजी की डांट नहीं पड़े बच्चे पर, हाँ वैसे अपने दोष भी। ये तो शब्दों के अर्थ, किस तरह से वो शब्द तैयार हुए उस अपेक्षा ये अर्थ बता रहे, अभी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना इसमें। जो महान कर्मों में शयन करता है या प्रमत्त होता है उसे पुरुष कहते हैं, पुरुषेति इति पुरुष, शेति यानी उसमें सोता है। जो न पुरुष रूप हो और न स्त्री रूप हो उसे नपुंसक कहते हैं। इस उपर्युक्त कथन का अभिप्राय यह है, अभी ये तो शब्द की उत्पत्ति अर्थ बताया, अभी उसमें अभिप्राय क्या कहना चाहते हैं उसकी बात यहाँ बताएंगे। अभी यहाँ पुद्गल कर्मों की बात चल रही है। कौन से पुद्गल कर्मों की बात है? नो कषाय कर्म। जिन कर्म स्कंधों के उदय से पुरुष में आकांक्षा उत्पन्न होती है, उन कर्म स्कंधों की स्त्रीवेद यह संज्ञा है। यानी पुरुष संबंधी जो आकर्षण उत्पन्न होता है, आकांक्षा, उसके जो भय, उसको स्त्री वेद कहा। स्त्रियों को पुरुषों के संबंध में आकर्षण है तो उसको स्त्री वेदी कहा। जिन कर्म स्कंधों के उदय से स्त्री के ऊपर आकांक्षा उत्पन्न होती है, उनकी पुरुष वेद यह संज्ञा है। और जिन कर्मों के उदय से ईंटों के अवाकी अग्नि के समान, वो ईंटें गर्म करते ना भट्टी में, उसको अवाकी अग्नि कहते हैं। अवाकी अग्नि या सेक भी देते ना, ईंट का सेक देते, कोई बीमारी हो, कोई मार लगा है तो ईंट ऐसे गर्म करके कपड़े में बांध के उसका सेक देते हैं, उसका बहुत लंबे काल तक वो गर्म रहती ईंट। तो ईंटों के अवाकी अग्नि के समान स्त्री और पुरुष इन दोनों पर भी आकांक्षा उत्पन्न होती है। यानी इनके जो ये जो विभाव रूप परिणाम चलता है, लंबे काल तक चलता है, इसलिए उसकी ये उपमा दे के समझाया है। ये दोनों संबंधी आकांक्षा उत्पन्न होती है, उनकी नपुसक वेद यह संज्ञा है। यहाँ किसी शारीरिक क्रिया विशेष से बात नहीं है, जीव के परिणाम जो है उन्हें आकांक्षा की संबंधी है, उसकी बात यहाँ चल रही है। और हमने पहले भी देखा था ये जो बातें हैं वो भाव वेद यानी जीव की आकांक्षा संबंधी है। कभी कभी द्रव्य से पुरुष वेद होने पर भी भाव से स्त्री वेद चलता रहता है। तिर्यंच और मनुष्यों में ये होता है, देवों में तो स्त्रियों को स्त्रीवेद ही होता है भाव से भी, पुरुषों को पुरुष वेद ही होता है, नारकियों में तो सभी को नपुसक वेद होता है, और मनुष्य तिर्यंचों में भोग भूमि में तो जो अपना अपना वेद होगा, और कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में, ये तो तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो हमने देखा पुरुष द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री पुरुष नपुसक, तीनों भी मोक्ष भी जा सकते हैं। तो यहाँ किसी क्रिया विशेष से भी बात नहीं है, पर जो कुछ वहाँ उदय रूप कर्मों की अपेक्षा जो आकांक्षा होती है उसकी अपेक्षा यहाँ बात है। अब हास्य कर्म की बात करेंगे। हंसने को हास्य कहते हैं। जिस कर्म स्कंध के उदय से जीव के हास्य निमित्तक राग उत्पन्न होता है, हास्य निमित्तक राग कहा। ये राग और द्वेष में हम इसको डिवाइड करते हैं ना, नौ नौ कषायों को, आपको मालूम है इंदुबेन? हाँ, हास्य रति और तीन वेद, तीनों वेद ये राग में जाते हैं, और रति शोक और भय जुगुप्सा ये द्वेष रूप परिणाम है। तो हास्य निमित्तक राग उत्पन्न होता है। उस कर्म स्कंध की कारण में कार्य के उपचार से, ये बात आई ना, कारण में कार्य का उपचार हुआ, कभी कभी कार्य में कारण का उपचार होता है। यहाँ कारण में कार्य का, कार्य क्या हुआ? हास्य रूप परिणाम हुए, उसका कारण यानी निमित्त रूप से लेना, कौन सा है? हास्य कर्म, हंसने के भाव हुए, हंसने के परिणाम हुए, तो परिणाम को हम हास्य कहते हैं, और वहाँ निमित्त रूप से हास्य कर्म का उदय चल रहा है तो उस कर्म का भी नाम लिया हास्य। इसको कहते हैं कारण में कार्य का उपचार किया। तो कारण में कार्य के उपचार से हास्य यह संज्ञा है। रमने को रति कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा जीव विषयों में आसक्त होकर रमता है उसे रति कहते हैं, जिसमें वो चाव, बहुत चाव से उसमें ऐसे रस लेता है ना, कोई टीवी देखने में, कोई खाने में, जो कुछ है वो रति है, आसक्ति। जिन कर्मस्कंधों के उदय से द्रव्य क्षेत्र काल और भावों में राग भाव उत्पन्न होता है, उनकी रति यह संज्ञा है। अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सब कुछ आ गया। जिन कर्मस्कंधों के उदय से द्रव्य क्षेत्र काल और भावों में जीव के अरुचि उत्पन्न होती है, उनकी अरति यह संज्ञा है। आप कहेंगे काल में कैसी अरुचि होती होगी? काल यानी यह द्रव्य की विशिष्ट पर्याय के अर्थ में काल लेना, हम तो देखते हैं विशिष्ट उसकी पर्याय है तो वो अच्छी नहीं लगती, विशिष्ट उसके कोई जो है भाव वो अच्छे नहीं लगते। अरतीय संज्ञा, जैसे हमें कोमल वस्त्र अच्छा लगता है, जाड़ा कोई होगा तो अच्छा नहीं लगता, वो तो अरति भाव होता है उसके प्रति। ऐसे सब में लगा लेना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सब में लगा लेना अरति। शोच करने को शोक कहते हैं, अथवा जो विषाद उत्पन्न करता है उसे शोक कहते हैं। जिन कर्मस्कंधों के उदय से जीव के शोक उत्पन्न होता है उनकी शोक यह संज्ञा है। भीति को भय कहते हैं। उदय में आए हुए जिन कर्मस्कंधों के द्वारा जीव के भय उत्पन्न होता है उनकी कारण में कार्य के उपचार से भय यह संज्ञा है। ग्लानी होने को जुगुप्सा कहते हैं। जिन कर्मों के उदय से ग्लानी उत्पन्न होती है उनकी जुगुप्सा यह संज्ञा है। और इस प्रकार ये नौ ही कर्मों की बात, यानी नौ कषायों की बात कर दी। हाँ, जीव के जो परिणाम होते हैं तो कर्मों को भी वैसे वैसे नाम दिए हैं। इन कर्मों का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? परंतु ऐसा नहीं समझा क्या करे, हमको इतना शोक आ रहा है क्योंकि क्या वहाँ शोक के उदय चल रहा है ना, इसलिए हमको शोक आ रहा है। जीव स्वयं वैसे वैसे भाव करता है और उस समय वैसा वैसा उदय नियम से यानी निमित्त रूप से वैसे पाया जाता है। ये सहज उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ ऐसा कर्म उदय में आया इसलिए हमको क्रोध हो रहा है या हमको शोक हो रहा है या हमको हस्य हो रहा है, ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि अपना दोष हम कर्म पर डालना चाहते हैं। प्रवचन सार में तो इसीलिए पहले कहा ना, वो तेरा और कर्म का कोई संबंध नहीं, पहले ये स्वीकार कर कि तेरे में होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणाम तेरे अपने कारण से अपने में हो रहे हैं, ये सब उसमें लगाना। हाँ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा सब ये अपने में अपने कारण से होते हैं, पहले ऐसा स्वीकार करेंगे तो फिर कर्मों की बात क्यों की? क्योंकि आज तक हम परद्रव्य को मान रहे थे निमित्त, तो यदि तुझे निमित्त ही ढूंढना है तो ये कर्म को बता, तो क्या करे कर्म है ऐसे है। क्योंकि जीव की पराधीनता इतनी पड़ी ना, और उस कहीं ना कहीं उसको जिसको कहते ना पड़वाट, यानी कोई ऐसा मार्ग ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते कि अपना दोष दूसरे पर मत दे, कोई ना कोई चाहिए ना, क्योंकि हम तो अच्छे हैं, क्या करें कर्म ऐसा है, क्या करें हमारे पड़ोसी ऐसे है, क्या करें हमारे बच्चे नहीं सुनते, क्या करें ये क्या करें में वो तो अपना दोष, ये जो कषाय अपने कारण हो रहे उसका स्वीकार नहीं करता है। तो ये शंकाकार ने यहाँ पूछा इन कर्मों का अस्तित्व कैसे जाना जाता है, ये हास्य रति वगैरह जो पहले उसने प्रश्न पूछा था वैसे यहाँ पर भी पूछ रहा है। प्रत्यक्ष के द्वारा पाए जाने वाले अज्ञान अदर्शन आदि कार्यों की उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती, इस अन्यथा अनुपपत्ति से उक्त कर्मों का अस्तित्व जाना जाता है। ये जो उसके जीव के परिणाम अभी हमने हास्य शोक वगैरह भय वगैरह देखे थे उनकी उत्पत्ति कारण के बिना नहीं होती, यहाँ निमित्त कारण की अपेक्षा कथन चल रहा है। कर्णानियोग में तो निमित्त की मुख्यता से बात है, उपादान है ही नहीं, ऐसी बात नहीं ना, होता तो कार्य उपादान से ही, परंतु यहाँ अभी यह अपना जो अनुयोग है यहाँ तो निमित्त की मुख्यता से कथन चल रहा है। तो कर्णानियोग में तो निमित्त से होता है और द्रव्यानियोग में तो उपादान से होता है, ऐसी भी बात नहीं है। और ये सब पुस्तकों में होता है, हमारे में तो कुछ नहीं होता है। समय सार में वो है और यहाँ प्रवचन सार इसमें भी है, ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं ना वो समय सार वाला आत्मा है और ये प्रवचन सार वाला आत्मा है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। अब 25 नंबर का सूत्र, आउ गस्स कम्मस्स चत्तारी पयड़ियो। आयु कर्म की चार प्रकृतियां हैं। यह संग्रह नयाश्रित सूत्र है क्योंकि अपने भीतर समस्त विशेषों का संग्रह करने वाला है, उसके सभी भेद इसमें गर्भित है। इस सूत्र से संपूर्ण अर्थों का ज्ञान कैसे होता है? संपूर्ण अर्थ नहीं, ये चारों जो है उसका अर्थ किस तरह से हो सकता है, उसका समाधान इस सूत्र को आधारभूत करके आगमानुकूल यानी आगम के अनुकूल यानी यथा आगम में बताया वैसा सभी अर्थों के प्रतिपादन करने वाले आचार्य से क्या कहते हैं, ऐसे आचार्यों से हमें इसकी प्राप्ति होती है अर्थ की। कैसे आचार्य है, ये आचार्यों का विशेषण बताया। आगम के अनुकूल सभी अर्थों का प्रतिपादन करने वाले आचार्य, आचार्य कैसे, जैसे परंपरा से भगवान की वाणी चली आ रही है उसके अनुसार उसके अनुकूल जो कथन करे ऐसे प्रतिपादन करने वाले आचार्य, उनके द्वारा संपूर्ण अर्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। उनको आधारभूत कहा, ये अर्थ हमें कैसे प्राप्त हुआ, किनके आधार से, तो आचार्यों के आधार के द्वारा। अब पर्यायार्थिक नए वाले जीवों का अनुग्रह करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, अब इनमें चारों ही प्रकृतियों के अलग अलग नाम बताएंगे। निरयाऊ तिरिक्खाऊ मनुष्याऊ देवाऊ चैदी, नरकायु तिर्यगायु मनुष्यायु और देवायु, ये आयु कर्म की चार प्रकृतियां हैं। नहीं, आपका प्रश्न है पर्यायार्थिक नहीं यानी गति की अपेक्षा चार अलग अलग गति के जीव, ऐसा नहीं। पर्यायार्थिक यानी अभी हमने जो आयु कर्म चार प्रकार का है देखा, ये तो द्रव्यार्थिक नहीं का कथन हुआ, चार ही बता दिया। पर्यायार्थिक नहीं उन भेदों के नाम बताना, भेद करके समझाना, इसको कहते हैं पर्यायार्थिक नहीं। आपका कुछ प्रश्न था,
सभी अर्थों का माने नया अर्थ ये सभी ऐसा भी हो सकता है कि पांचों पांच अर्थ कर,
हाँ, संपूर्ण अर्थों का यानी संपूर्ण पदार्थों का,
अच्छा,
अर्थ यानी पदार्थ सभी वस्तु यानी जो जो कुछ आगम में जो कोई बातें आई है उन सभी बातों से संबंधित बातें ऐसा भी ले सकते हैं उसका अर्थ पदार्थों का, हाँ, अर्थ यानी पदार्थ, हाँ। अभी ये जो हमने चार नाम बताए देखे, अभी आयु कर्म के चार नाम देखे ना, उसका अर्थ समझा रहे हैं। जिन कर्म स्कंधों के उदय से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले जीव का नारक भव में अवस्थान होता है, क्या कहा है, जीव का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमन, और वो जा कहाँ रहा है, नरक में, वहां अवस्थान होता है ना, रहना होता है। अभी जाना तो वो गति कर्म के उसमें कहेंगे, नरक में रहना होता है उसका। हमारा भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, और कहाँ पड़े हम, यहाँ मनुष्य लोक में पड़े हैं, हम बीच में ही लटक रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, ये कह रहे थे क्या। जिन कर्म स्कंधों के उदय से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले जीव का नारक भव में अवस्थान नहीं रहना, अवस्थान होता है, उन कर्मस्कंधों की नरकायु यह संज्ञा है। जिन कर्मस्कंधों के उदय से तिर्यंच भव में जीव का अवस्थान होता है, उन कर्मस्कंधों की तिर्यगायु यह संज्ञा है, तिर्यंच भव में उनका अवस्थान है। इसी प्रकार मनुष्यायु और देवायु का भी स्वरूप कहना चाहिए। शंका, जिस प्रकार घट पट और स्तंभ, घट तो ये मिट्टी का घट मालूम है, पट यानी वस्त्र, स्तंभ यानी खंबा, ये पिलर समझाने के लिए भी सामने आचार्य तो यदि का उदाहरण लेके समझाते कोई भी चीज, घट पट स्तंभ आदि आदि में सभी वस्तुएं, आदिक पर्यायों का अवस्थान यानी उनका रहना, उनकी स्थिति वैसरसिक यानी स्वाभाविक होता है। उसी प्रकार नरक भव आदि पर्यायों के भी वैसरसिक अवस्थान होने पर क्या दोष है। देखो, दो प्रकार पाए जाते हैं, वैसरसिक और प्रायोगिक। अब ये मेघों का आकार किसने बनाया, कोई ईश्वर वहां बैठा होगा आकार देने के लिए, तो किसी ने, तो सहज स्वाभाविक परिणमन से हुआ है तो उसको कहते हैं वैसरसिक। और प्रायोगिक यानी किसी अन्य के प्रयोग के द्वारा होता है, जैसे मनुष्य के द्वारा या अन्य किसी। घट का आकार किसने बनाया, कुम्हार ने, हम कहेंगे ना, अभी निमित्त का ही कथन चल रहे हैं। या भी ये भाषा के जब हमने भाषा वर्गना वगैरह जो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक भाषा होती है उसके देखे थे, तो वहाँ भी वैश्रसिक और प्रायोगिक ऐसे दो भेद देखे थे। तो ये मेघों की जो गर्जना होती है वो वैश्रसिक कहा उसको, और प्रायोगिक में जो तत् वितत् वो सब घन वगैरह जो है, जैसे सतार का आवाज़ है, कोई तार वाद्य है या कोई ये जो मृदंग वगैरह जो बजाते हैं, तो ये कैसे प्रायोगिक किसी अन्य जीव के द्वारा यहाँ प्रयोग रूप से उसको उत्पन्न किया, उसको प्रायोगिक कहते हैं। तो यहाँ शंकाकार पूछ रहा है कि घटपट स्तंभ आदि पर्यायों का अवस्थान यानी वे पर्याय रहना वैश्रयिक होता है, उसी प्रकार नरक भव आदि पर्यायों के भी वैश्रसिक अवस्थान होने पर क्या दोष है, ऐसा उसका पूछना है। ये भी स्वभाव से ही ऐसा होता होगा, यानी ये विभाव रूप है, ये वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, क्योंकि अकारण अवस्था मानने पर नियम में विरोध आता है। कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता है। तो अकारण अवस्थान, अकारण यानी बिना कारण के नरक में रहना, ये बन नहीं सकता। तो वहां कोई कारण अवश्य होना ही चाहिए। अर्थात देव और नारकों का जघन्य अवस्थान 10,000 वर्ष वहां रहने का, यानी उस भव की स्थिति जो है वहां की आयु कम से कम 10,000 वर्ष। ये शंका करने पूछा है, तो उसके पूछते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होनी ही चाहिए। तो ये देव और नारकियों का वहां अवस्थान कम से कम कितना है, 10,000। तो हमें मालूम है वहां की आयु कर्म भी 10,000 वर्ष मिनिमम वो बांधी होगी उसमें, ये उसका कारण है वहां पर। और उत्कृष्ट भव संबंधी अवस्थान 33 सागरोपम है। तिर्यंच और मनुष्यों का जघन्य अवस्थान अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में ही वो मरता है। कौन कौन सा लब्धि है पर्याप्त अंतर्मूर्त आयु ना इसकी। और उत्कृष्ट अवस्थान 3 पल्लोपों में भोग भूमि की अपेक्षा बताया। यह नियम घटित नहीं होता, यानी यदि उनको अकारण मानेंगे तो ऐसा ही रूल क्यों, बिना कारण के यदि हम मानते तो देव और नारकियों में कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक वो 33 सागर, मनुष्यों में अलग, ऐसा ये डिफरेंस क्यों होता। तो इसलिए यह नियम घटित नहीं होता, और इस नियम के अभाव में पुद्गलों के समान अनियम से अवस्थान प्राप्त होगा। क्या कहते हैं, जैसे पुद्गलों में ऐसा कोई समान नहीं है, ऐसी कोई नियम नहीं है, उनके स्थिति का कोई नियम नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पर कितने काल टिके, ऐसा कोई नियम है। अंतर्मूर्ति पट्टी को रहना चाहिए, बाद में उठकर अन्यत्र चला जाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो भव संबंधी नियम पाए जाते हैं, मनुष्य तिर्यंचायु की मिनिमम आयु और मैक्सिमम आयु, यानी उनका भव इतना है, अभी भव की बात छोड़ो, हम रहने का काल कहेंगे, और देवों में रहने का कम से कम काल 10,000 और अधिक से अधिक 33 सागर, ऐसा ही क्यों, क्योंकि वहां कोई तो कारण होना ही चाहिए जो सामान्य अन्य पुद्गलों में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनमें ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई कारण है, और वो है आयु का कर्म, आयु कर्म जिसको हम कहते हैं। देखो यहाँ लिखा ना, इस नियम के अभाव में, यानी ऐसा अगर हम कोई कारण होता ही नहीं ऐसा मानेंगे, नियम का अभाव है ना, ऐसा कोई कारण है ही नहीं ऐसा मानेंगे, तो पुद्गलों के समान अनियम से अवस्थान प्राप्त होगा। तो कोई भी जीव कहां पर भी वो अनियम से उसका अवस्थान रहा करेगा। फिर शंका, पुद्गलों का अनियम से अवस्थान कैसे है, ये तो समझना है ना हमें। उसका समाधान, पुद्गलों का 1, 2, 3 समयों से लेकर उत्कृष्ट रूप से या उत्कृष्ट से मेरु पर्वत आदि में अनादि अनंत स्वरूप से एक ही आकार का संस्थान पाया जाता है। अभी मेरु पर्वत के जो कोई पुद्गल परमाणु है, वो कम से कम कोई एक समय तक आ गए और फिर अन्यत्र चले गए, मेरु पर्वत रूप से रहे और फिर अन्यत्र चले, कोई 2 समय के लिए, कोई 3 समय के लिए, कोई बहुत काल के लिए, और कोई तो अनादि अनंत रूप से वहीं पर रहेंगे, एक ही आकार संस्थान पाया जाता है। यानी वो उसका कोई ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं सबको अभी ये इतने काल में कोई परमाणु ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 वर्ष के बाद वो तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वो मेरु पर्वत का उदाहरण दिया यहाँ। इसलिए भव संबंधी अवस्थान को सहेतुक होना चाहिए, यानी जिस भव में रहने का जो हम काल कहते हैं वहाँ जो रहना है सहेतुक यानी हेतु सहित यानी कारण सहित होना चाहिए, यानी वहाँ कोई ना कोई कारण अवश्य है, नहीं तो ये भव में जो लिमिट्स बताइए आयु रहने की, उसको आयु तो अभी हम कहेंगे, आयु कर्म को जब कहेंगे तब, पहले तो हम भव में रहने का काल देख रहे हैं, उसकी अवस्थिति यानी वहाँ की स्थिति, किसी विशिष्ट भव में कि जीव कितने काल तक रहता है ये निश्चित है, और ये निश्चित है तो वहाँ उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। ये सब न्याय चल रहे हैं, युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। अन्यथा अन्य शरीर को गए हुए भी जीवों के नरक गति के उदय का प्रसंग प्राप्त होगा। अन्य अन्य शरीर को गया, देखो नरक गति का तो उदय चल रहा है और कोई स्थिति का उसका कारण ही नहीं है, तो नरक गति का उदय है और अन्य अन्य शरीर को प्राप्त होता रहेगा, ऐसा भी हो इस तरह आयु कर्म है ये बात उन्होंने सिद्ध किया। हाँ, देखो ऐसा कहते हैं, ये नरकायु की बात चल रही है, नरकायु के कारण नरक में ही वो 10,000 वर्ष या कहो जो कुछ वहाँ की आयु है उतने काल तक उस भव में रहेगा, वहाँ उसकी अवस्थिति बनेगी और वहीं पर उसका नरक गति का भी उदय चल रहा है। यदि हम नरकायु को नहीं मानेंगे तो वो कहीं पर भी भटक सकता है और नरक गति का उदय चलता रहे। हाँ, स्वर्गों में ही गया और नरक गति का उदय होता रहे, क्योंकि उसकी कोई रहने का ठिकाना नहीं ना वहाँ। जब मनुष्य गति का उदय हो रहा है और मनुष्यायु है ही नहीं है, तो कहीं भी जाएगा और मनुष्य गति का उदय होता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ अरविंद भी न्याय के नाम सीख गए। अब नाम कर्म की बात करेंगे। नामस्य कम्मस्य वादालीसम पिंड पयडीनाम आयिम। वादाली से ने कहा समझ में, 42 बादल कहा है, बादल चाहिए, बादालीसम बादालीस नीचे उसका अर्थ किया है। नाम कर्म की 42 पिंड प्रकृतियां हैं। जब पिंड अपिंड मिलकर 42 होती है, अकेली पिंड प्रकृति तो 14 है, पिंड अपिंड मिलकर 42 होती है, फिर भी उसको पिंड प्रकृतियां 42 है ऐसा कहते हैं। इस संग्रह नयाश्रित सूत्र का अर्थ ज्ञान करके कहना चाहिए। अब ये सब उसके नाम यहाँ गिना रहे हम पर हमारे अनुग्रह के लिए।
जो आते 42 दिन में ये आपको याद करने है, एक रोज याद करना है, तो 42 प्रकृतियां 42 दिन में याद होगी।
ये जो इसमें आ गए, ये पंचलब्धि के पहले तीन जो चैप्टर्स है उसमें कर्मों की बहुत सारी बातें, उसके डेफिनेशन, उसका स्वरूप, यदि उसके नाम थोड़े अपने ख्याल में रह जाएंगे याद में, तो आगे का कोई भी प्रकरण आपके बहुत आसानी से ख्याल में आएगा। क्योंकि एक बार वो हम आदि हो जाते हैं ना उन नाम के, तो 2-4-5 नाम लेते तो कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होता, ये क्या बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं होगा। ये याद करने जैसा एक नाम कर्म में ही है, और बाकी तो क्या थोड़ी थोड़ी है सबकी, उसमें कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय वो तो सब मालूम है हमें, आयु नाम नाम की छोड़ो, आयु वेदनी और गोत्र वो तो आसान है। अब नाम कर्म की प्रकृतियाँ दिन में एक बार गिन लेना उसको, हम पढ़ेंगे इसको गदि नामम जादि नामम शरीर नामम शरीर बंधन नामम शरीर संघात नामम, शरीर संठान नामम, शरीर अंगोवांग नामम, अंगोवंग नामम, शरीर संघड़न नामम यानी सहनन, वर्ण नामम, गंध नामम, रस नामम, फास नामम, आणुपूवी नामम, अगुरु अलहु वणामम, अलहु वणामम, उवाद नामम, उवघाद नामम, परघाद नामम, उस्सास नामम, आदाव नामम, उश्वास अगर लघु उपघात परघा आताप, उज्जोव नामम यानी उद्योत, विहाय गति नामम। देखो ये बाकी तो सब विहाय गति बाद में बताई उन्होंने, मगर ये पिंड की एक साथ रखनी है ना, तो 14वां नाम इसका लेना है। ये 14वां देखो, देखो अभी हमने ऊपर देखा ना, शरीर संघात, फिर वर्ण रस गंध स्पर्श, आनुपूर्वी, आनुपूर्वी तक सब ग्रुप वाली थी 13, और विहाय गति भी ग्रुप वाली है, प्रशस्त विहाय गति और प्रशस्त, तो ये पिंड प्रकृतियां, और रिमेनिंग जो 28 है वो अपिंड प्रकृतियां हैं। फिर भी यहाँ ऑर्डर अलग है इसलिए वो तो बीच में आ गई। तसनामम, थावरनामम, बादरनामम, सुहमनामम, पज्जतनामम, अपज्जतनामम, पत्तेय शरीरनामम, साधारण शरीरनामम, थिरनामम, अथिरनामम, सुहनामम, असुहनामम, सुभगनामम, दुभगनामम, सुसरनामम, दुसरनामम, आदेज्यनामम, अनादेज्यनामम, जसकित्तिनामम, अजसकित्तिनामम, निमिननामम, ये निर्माण नाम कर्म, तीर्थ एर नामम चेदी। अभी इसके जो हम हमेशा पढ़ते वैसा हिंदी में नीचे बताएंगे। गति नाम, जाति नाम, शरीर नाम, शरीर बंधन नाम, शरीर संघात नाम, शरीर संस्थान नाम, ये शरीर के बाद कॉमा नहीं चाहिए, पहली लाइन में अंत में कॉमा नहीं चाहिए। शरीर अंगोपांग नाम, शरीर सहनन नाम, वर्ण नाम, गंध नाम, रस नाम, स्पर्श नाम, आनुपूर्वी नाम। देखो यहाँ अनुपूर्वी पहले लिया, हाँ इसी ऑर्डर से, पहले 14 जो है पिंड प्रकृति, पहले 14 बताइए, ऐसा ही है ये अनु विहाय गति बाद में बताए उन्होंने। अगुरु लघु नाम, उपघात नाम, परघात नाम, उच्छ्वास नाम, आताप नाम, उद्योत नाम, विहाय गति नाम, त्रस नाम, स्थावर नाम, बादर नाम, सूक्ष्म नाम, पर्याप्त नाम, अपर्याप्त नाम, प्रत्येक शरीर नाम, साधारण शरीर नाम, स्थिर नाम, अस्थिर नाम, शुभ नाम, अशुभ नाम, सुभग नाम, दुर्भग नाम, सुस्वर चाहिए, सुरुवर जैसा दिख रहा है, सुस्वर, स्व बराबर करना, सुस्वर नाम, दुस्वर नाम, आदे नाम, अनादे नाम, यश कीर्ति नाम, अयश कीर्ति नाम, निर्माण नाम और तीर्थंकर नाम, ये नाम कर्म की 42 पिंड प्रकृतियां हैं। पिंड हुआ है क्या, क्या नहीं बराबर है, वो स्पष्ट रहे, पिंड प्रकृतियां हैं, इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। पिंड प्रकृति क्यों कही, अभी गति नाम जैसे 4 प्रकार का है, ग्रुप्स है ना, वो ग्रुप को मिलकर एक गति नाम कर्म कह दिया, परंतु सच में वहाँ नरक गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म, ऐसे अलग अलग उसको पढ़ना है। तो ये हरेक का यहाँ अर्थ बताएंगे, लिखा ना, इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। गति है नाम भव अर्थात संसार का है, यदि गति नाम कर्म न हो तो जीव गति रहित हो जाए। जिस जीव भाव में आयु कर्म से अवस्थान को प्राप्त करने पर शरीर आदि कर्म उदय को प्राप्त होते हैं, वह भाव मिथ्यात्व आदि कारणों के द्वारा कर्म भाव को प्राप्त जिस पुद्गल स्कंद के उदय से उत्पन्न होता है, उस कर्म स्कंद की गति संज्ञा है। इसको फिर दोबारा लेंगे हम कल, हाँ यही सही, वो गति से ही स्टार्ट करेंगे इसको। जावाणी के ज्ञान ते सकता